नित्यनरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भीमसेन और दुर्योधन दोनों आमने सामने खड़े थे, बस भयंकर युद्ध होगा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को खूब कल फटकारा कि तुमने जैसे जुआ खेला था वैसा उससे भी बड़ा जुआ खेल दिया। तुमने ये क्यों कहा कि हमारे में से जिसको तू हरा देगा हम सब राज्य हार जाएंगे? बोले नहीं, गलती मान ली। तुम्हारे में कोई मरता तो मर जाता, कितनी मुश्किल से राज्य लिया है। इसका भाव क्या था? युधिष्ठिर का भाव यह था कि हमारे पर भगवान की कृपा है, हम इससे मर नहीं सकते हैं। ये इतना पापी, इस पापी से हम थोड़ी मर जाएंगे। इस भाव से युधिष्ठिर महाराज ने दांव पर लगाया था पांचों भाइयों को। तो बलराम जी आ गए बीच में, सब बलराम जी की पूजा की बैठे, कृष्ण भगवान भी मिले। दोनों योद्धाओं ने अपनी गदाएं ऊंची की, सत्कार हो गया, पास में आए, प्रणाम किया, सब बैठ गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भैया बलराम, अब बस इन दोनों का युद्ध होने वाला है, आप इनका युद्ध देखो। बलराम जी सबकी सभा में बैठ गए। जन्मेजय ने पूछा कि हे वेशमपायन जी, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले ही बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण की सम्मति लेकर अन्य वृष्णि वंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते जाते ये कह गए थे कि मैं न तो दुर्योधन की सहायता करूंगा न पांडवों की, तब फिर यहां क्यों आए? इनके आने का कारण क्या था? ये तो कौरव पांडव दोनों से ही मुंह मोड़ चुके थे। ये बात आप हमको विस्तार के साथ सुनाओ। वैशंपायन जी बोले, हे राजन जन्मेजय, जिन दिनों पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे उन्हीं दिनों की बात है। पांडवों ने सब प्राणियों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि कौरव पांडवों में शांति बनी रहे, कलह न हो, भगवान हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से मिले और उनसे सबके लिए हितकर एवं यथार्थ बातें कही। किंतु उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना। जब वहां संधि कराने में सफल नहीं हो सके तो भगवान उपप्लव्य में ही लौट आए और पांडवों से बोले, कौरव अब काल के वश में हो रहे हैं, इतना मैंने उनको समझाया है, मेरी बात उन्हें गले नहीं उतरती है। पांडवों, अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो। इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा तो बलदेव जी ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, तुम यदि पांडवों की सहायता करते हो तो कौरवों को भी सहायता करना। परंतु कृष्ण ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इससे बलराम जी रूठ गए और नाराज होकर पुष्य नक्षत्र में वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग द्वारिका जाकर तीर्थ यात्रा में उपयोगी सभी आवश्यक सामान लाओ। अग्निहोत्र की अग्नि, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण, सोना चांदी गऊ वस्त्र घोड़े हाथी रथ खच्चर और ऊंट ये सब साथ में लेके चलते हैं। इस प्रकार आदेश लेकर वे सरस्वती नदी के किनारे किनारे उसके प्रवाह की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ ऋत्विक सुरिद श्रेष्ठ ब्राह्मण रथ हाथी घोड़े सेवक बैल खच्चर ऊंट सब थे। उन्होंने देश देश में थके मांदे रोगी बालक वृद्धों का सत्कार कर तरह तरह से दान देने योग्य वस्तु दान में दी, भूखों को भोजन कराया, सर्वत्र अन्न का प्रबंध कराया। जिस किसी देश में कोई भी ब्राह्मण जब भोजन की इच्छा प्रकट करता उसको उसी स्थान पर तत्काल भोजन करा देते थे। भिन्न भिन्न तीर्थों में बलदेव जी की आज्ञा से उनके सेवक खाने पीने के पदार्थों के ढेर रखते थे। ब्राह्मणों के सम्मानार्थ बहुमूल्य वस्त्र पलंग और बिछौने तैयार रहते थे। इस यात्रा में सब लोग आराम से चलते और विश्राम करते थे। यात्रा करने वालों की यदि इच्छा हो तो उन्हें सवारियां भी मिलती थी। प्यासे को पानी पिलाया जाता और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिया जाता था। उन यात्रियों का रास्ता बड़े सुख से तय होता था, स्वर्ग जैसा आनंद मिलता था। सब बड़े प्रसन्न थे। साथ में खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी चलता था। महात्मा बलदेव जी ने अपने मन को वश में रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया, यज्ञ करके उन्हें दक्षिणाएं दी, हजारों दूध देने वाले गौवे दान की, उन गौवों के सींग में सोना मंडा हुआ था, सुंदर वस्त्र ओढ़ाए गए, भिन्न भिन्न देशों के घोड़े दान दिए गए, तरह तरह की सवारियां सेवक रत्न मोती मणि मूंगा सोना चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी ब्राह्मणों को दिए। इस प्रकार सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों में बहुत सा दान देकर बलराम जी कुरुक्षेत्र आ पहुंचे थे। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण आप मुझे सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों के गुण प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। जिन जिन तीर्थों में बलराम जी गए थे उन तीर्थों में जाने का क्या फल है, यात्रा की सिद्धि कैसे होती है तथा जिस क्रम से बलराम जी ने यात्रा की वो सारा क्रम भी बताइए, मुझे ये सब सुनने की बड़ी इच्छा है। वैशंपायन जी बोले, राजन सरस्वती तट के तीर्थों का विस्तार उनका प्रभाव उनकी उत्पत्ति की पवित्र गाथा सुनाता हूं। यादव नंदन बलराम जी ब्राह्मणों तथा ऋत्विकों के साथ सबसे पहले प्रभास क्षेत्र में गए, जहां राज यक्ष्मा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को शाप से छुटकारा मिला तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्राप्त हुआ, जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा को प्रभाषित करने के कारण ही ये तीर्थ प्रभास क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। यहां जाकर के चंद्रमा रोग मुक्त हुए ना तो संसार को प्रभाषित करते हैं, तो वो क्षेत्र प्रभास क्षेत्र हो गया। जन्मेजय ने पूछा, महाराज चंद्रमा को ये राजयक्ष्मा कैसे हो गया? राजयक्ष्मा ने टीबी की बीमारी कैसे हो गया और उन्होंने उस तीर्थ में किस तरह स्नान किया और उसमें डुबकी लगाने से वे रोग मुक्त हो कैसे पुष्ट हो गए, ये सारी बात बताओ। वैशंपायन जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याएं हुई थी 60, उनमें 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। उन सब की नक्षत्र संज्ञा थी। चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है उसकी गणना के लिए वे 27 रूपों में प्रकट हुई। उनमें रोहिणी का सौंदर्य सबसे बढ़कर था, इसलिए चंद्रमा का अनुराग रोहिणी में अधिक हुआ। वही उनकी हृदय वल्लभा थी, वे सदा उसके संपर्क में रहते थे। पूर्व काल में चंद्रमा रोहिणी के साथ अधिक काल तक रहे, इसलिए दूसरे नक्षत्र वाली स्त्रियां उनको बड़ी ईर्ष्या हुई। और वे सब कुपित होकर अपने पिता प्रजापति के पास चली गई और बोली, हे प्रजानाथ, चंद्रमा तो सदा रोहिणी के पास रहते हैं, हम लोगों से बोलते नहीं है, हम लोगों पर स्नेह नहीं करते, अब हम लोग वहां नहीं जाएंगी, आपके पास रहेंगी, नियमित आहार करके तपस्या में लगी रहेंगी। उनकी बातें सुनकर दक्ष आकर के चंद्रमा को कहने लगे कि देखो चंद्रमा, तुम अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो, एक के साथ पक्षपात करते हो, एक के साथ तुम उपेक्षा का बर्ताव करते हो, ये ठीक नहीं है, इससे तुम्हें पाप लगेगा। तदनंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा, देखो स्त्री के लिए पति कैसा भी होता है, पति पति होता है, पति के समान उसका संरक्षण करने वाला कोई नहीं है, पति में किसी प्रकार दोष मत देखो, चंद्रमा के पास चली जाओ, और मैंने चंद्रमा को समझा दिया है, मेरे यहां रहने से संसार पर बुरा असर पड़ेगा, सभी लड़कियां फिर अपने पति का त्याग कर करके अपने माता पिता के पास ही रहेंगी, जो अच्छा नहीं है। पिता के विदा करने पर वे पुनः पति के घर में चली गई, परंतु चंद्रमा के बर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा, उनका रोहिणी के प्रति प्रेम बढ़ता ही गया और वे सदा उसी से ही बातें करें। तब शेष कन्याएं पुनः एक साथ पिताजी के पास गई और कहने लगी, पिताजी, चंद्रमा तो आपकी बात नहीं मानता है, अब तो हम आपकी सेवा में रहेंगे, हमने निर्णय कर लिया है। दक्ष ने फिर चंद्रमा को बुलाया और कहा, तुम सब स्त्रियों के साथ अपने बर्ताव को क्यों भूल गए हो, या तो तुम याद करो, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात का अनादर किया और रोहिणी के साथ में वे रहने लगे। जब दक्ष को इस प्रकार बार बार समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में भरकर चंद्रमा के लिए राजयक्ष्मा की सृष्टि की और वो रोग चंद्रमा के शरीर में घुस गया। इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण से चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगा। उन्होंने उससे छूटने का प्रयत्न किया, नाना प्रकार के यज्ञ किए, किंतु दक्ष के साप से छुटकारा नहीं मिला। वे प्रतिदिन क्षीण होते ही चले गए। जब चंद्रमा की प्रभा एकदम नष्ट हो गई तो अन्न आदि औषधियों का पैदा होना भी बंद हो गया, क्योंकि जितनी औषधियां हैं, जितने अन्न हैं, उनमें जीवन जीने की शक्ति चंद्रमा ही देता है। चंद्रमा स्वयं ही निरोग नहीं है तो वह निरोग अन्न और निरोग वस्तु कैसे पैदा करेगा? जो वस्तु पैदा होती उनमें कोई स्वाद नहीं, कोई रस नहीं, उनकी शक्ति भी नष्ट हो गई। इस प्रकार अन्न आदि के न होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा, सारी प्रजा दुर्बल होने लगी। तब देवताओं ने चंद्रमा के पास जाकर कहा, यह आपका रूप कैसा हो गया जी? आप तो बड़े चमकते थे, एकदम आप तो निस्तेज हो गए, कारण बताओ, हम कोई उपाय करेंगे। उनके पूछने पर चंद्रमा ने अपने को श्राप मिलने का कारण बताया कि मुझे दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया है और उससे मेरी बीमारी लग गई है। देवता लोग दक्ष के पास गए और बोले, आपको विचार करना चाहिए, सारी सृष्टि के तत्वों को अमृतमय बनाने का काम जो चंद्रमा करता है, आप उस चंद्रमा को ही बीमार कर दोगे तो सारी सृष्टि बीमार हो जाएगी। क्या कर रहे हैं आप? चंद्रमा को दिया हुआ शाप आप हटाइए, उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है। देखते नहीं, तृण लता बेले औषधियां नाना प्रकार के बीज ये सब निस्तेज हैं, इनके न रहने से हमारा नाश हो जाएगा, फिर हमारे बिना संसार कैसे रहेगा? इस बात पर ध्यान दो और इसके ऊपर चंद्रमा पर कृपा करो। देवताओं के ऐसा कहने पर प्रजापति बोले, मेरी बात तो मैं पलट नहीं सकता, एक शर्त पर उसका प्रभाव कम हो सकता है, यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करे तो सरस्वती नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से वो पुनः वापिस स्वस्थ हो सकते हैं। फिर ये 15 दिनों तक बराबर क्षीण होंगे और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। मेरी ये बात सच्ची मानो। पश्चिम समुद्र के तट पर जहां सरस्वती नदी सागर में मिलती है, जाकर के ये भगवान शंकर की आराधना करें, इससे उनको खोई हुई कांति मिल जाएगी। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से चंद्रमा सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए और वहां अमावस्या को उन्होंने स्नान किया, इससे उनकी प्रभा बढ़ गई, फिर समस्त संसार को प्रकाशित करने लगे। तब देवता लोग चंद्रमा को साथ में लेकर प्रजापति के पास गए। उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया और चंद्रमा से कहा, बेटा आज से अपनी पत्नियों का तथा ब्राह्मणों का कभी अपमान न करना, जाओ सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करो। यह कहकर प्रजापति ने जाने की आज्ञा दी। चंद्रमा जी अपने लोक में आए, संपूर्ण प्रजा पहले की तरह प्रसन्न रहने लगी। जन्मेजय, चंद्रमा को जिस प्रकार से शाप लगा वो मैंने तुमको सुना दिया। उस सरस्वती नदी के किनारे प्रभास तीर्थ में स्नान करने के पश्चात बलराम जी चमसोद भेद नामक तीर्थ में गए। वहां विधिवत स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार का दान किया, रात्रि में विश्राम किया। दूसरे दिन उदपान तीर्थ गए, जहां स्नान करने से मनुष्य का कल्याण होता है। इस तीर्थ में भी सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर छिपा है। देखो सरस्वती नदी है ना, ये 8 जगह है, 8 जगह चलती है, इसमें आए आगे। वैशंपायन जी कहने लगे कि महाराज, उदपान तीर्थ में पहुंचकर बलदेव जी ने आचमन लिया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा की, बहुत सा धन दिया और वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस तीर्थ में पहले त्रित नाम के मुनि रहते थे, बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने वहां कुएं में रहकर सोमपान किया था। उसके 2 भाई थे जो उन्हें कुएं में छोड़कर चले गए थे, इससे उन्होंने दोनों भाइयों को शाप दे दिया। जन्मेजय ने पूछा, महाराज ये उदपान माने कुआ तीर्थ कैसे हो गया? तीर्थ कोई तालाब होता है, तीर्थ कोई नदी होती है, कुआ भी तीर्थ होता है, और वे तपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों? दोनों भाइयों ने उसका क्यों परित्याग किया? उन्हें कुएं में छोड़कर क्यों चले गए? वहां रहकर कैसा उन्होंने यज्ञ किया और सोमपान किस तरह किया, ये हमको बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन पहले युग की बात है, 3 सगे भाई थे जो मुनि वृत्ति से रहते थे। एक का नाम था एकत, दूसरा का नाम था द्वित और तीसरे का नाम था त्रित। वे सब वेद वेत्ता थे, तपस्या में ब्रह्मलोक में स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा पिता का नाम गौतम था। गौतम जी अपने पुत्रों के लिए तप नियम और इंद्रिय निग्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ काल के बाद जब गौतम परलोकवासी हो गए तो यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। उनके भी त्रित मुनि अपने शुभ कर्म और वेदाध्ययन के द्वारा पिता के समान सम्मानित हो गए। एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, हम लोग त्रित को साथ में लेकर यजमानों का यज्ञ करावे और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें और फिर यज्ञ करके प्रसन्नता पूर्वक सोमपान करें। ये सोमपान है ना, ये आजकल लोग गलत अर्थ लगाते हैं। सोमपान था, सोम नाम की एक लता होती थी, उसका रस का पान करते समय चित्त की वृत्ति एक जगह ठहर जाती थी, तो सोमपान का रस का पान करके और परमात्मा का चिंतन करते, यज्ञ करके प्रसन्नता पूर्वक सोमपान करने लगे। ऐसा विचार करके दोनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करवाकर उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त किए। उन सबको लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले। त्रित मुनि तो हर्ष में भरे भरे आगे चलते थे और एकत और द्वित पीछे रहकर पशुओं को हांकते थे। पशुओं का ये महान संग्रह देखकर एकत और द्वित के मन में ये चिंता समाई गई कि कौन सा उपाय किया जाए जिससे ये गौवें त्रित को न मिलकर हमारे पास ही रह जाए। फिर वे आपस में कहने लगे, त्रित तो विद्वान है, उसे और बहुतेरे पशु मिल जाएंगे, इन गौओं को तो अपन दोनों ही मिलकर रख लो और चुपचाप अपन दूसरी तरफ हाँक करके ले चलो, त्रित तो आगे चल रहा है, उसको पता नहीं चलेगा, त्रित को अलग कर दो और कह दो उसके हो कि तेरी मर्जी आए जा जा। इस प्रकार से सलाह करते हुए वे मार्ग तय कर रहे थे। रात्रि के समय में एक भेड़िया खड़ा था रास्ते में, पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआ था। त्रित मुनि की दृष्टि उस भेड़िए पर पड़ी, उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते दौड़ते उस कुएं में गिर गए। भीतर से उन्होंने आर्तनाद किया, उनके दोनों भाइयों ने सुना, अरे भैया बचाओ मैं कुएं में गिर गया, परंतु वो तो चाहते ही यही थे, परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की, सुनते रहे। भेड़िए का भय तो था ही, लोभ ने भी अपने चंगुल में फंसा लिया, इसलिए त्रित को कुएं में छोड़कर चलते बने। जिस कुएं में पानी का नाम ही नहीं था, सिर्फ बालू भरा हुआ था, सब और घास और लताएं बड़ी हुई थी, उनसे उसका ऊपरी भाग ढका हुआ था। अपने आप को कुएं में गिरा देख त्रित को मृत्यु का भय हुआ, उनके सोमपान की इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान तो थे ही, विचार किया कि सोमपान कैसे प्राप्त करूं। इतने में ही कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर दृष्टि गई, फिर उन्होंने बालू से भरे कूप में जल की संभावना करके संकल्प के द्वारा अग्नि की स्थापना की, फिर अपने में होत्रित्व और उस लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का चिंतन किया। उसके बाद कंकड़ों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीस कर लता से सोमरस निकाला, फिर पानी में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं का भाग नियत कर दिया और सोमरस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमुल नाद किया और महात्मा त्रित को वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंजने लगी। देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी ने ये बात सुनी, उसे सुनकर देवताओं से कहा, देखो त्रित का कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां हम लोगों को चलना चाहिए, बड़े तपस्वी हैं, यदि नहीं चलोगे तो क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की सृष्टि कर देंगे। बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ हो त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहां चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित मुनि का भी दर्शन किया, बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। देवताओं ने कहा, हम अपना भाग लेने आए हैं। त्रित ने कहा, देवताओं देखो मैं किस दिशा में पड़ा हूं, किस दशा में पड़ा हूं। ये कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधि पूर्वक देवताओं को उनका भाग अर्पित किया। देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए और मुनि से बोले कि आप इच्छानुसार वर मांगिए। उन्होंने कहा, इस कुएं से मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे सोमपान करने तो हो। त्रित मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंगमालाओं से सुशोभित सरस्वती नदी लहरा उठी और उसके जल के साथ ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उनके मांगे हुए वरदान को पूरा कर दिया और अपने अपने स्थान पर चले गए। त्रित मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर पर आए, वहां अपने दोनों भाइयों को देखा तो बड़ा क्रोध हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को श्राप दिया। तुम लोग पशु के लालच में पड़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आए हो, ये महान पाप किया है, इस कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए बन जाओ और अपनी अपनी डाडे लिए इधर उधर भटकते रहो। तुमसे गवय, रींच और बांदर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। ऐसा कहते ही दोनों भाई भेड़िए की शक्ल में बदल गए। बलदेव जी ने नदी के भीतर उत्पान तीर्थ का दर्शन करके बड़ी आनंद की अनुभूति की और फिर उसके जल के आचमन से वहां के ब्राह्मणों की पूजा की, नाना प्रकार के दान दिए और फिर वे विनशन तीर्थ में चले गए। संजय कहते हैं, वहां सरस्वती नदी जमीन के भीतर अदृश्य रूप से बहती है, इसलिए ऋषिगण उसे विनशन तीर्थ कहते हैं। बलदेव जी वहां आचमन करके थोड़ा आगे बढ़े और सरस्वती के उत्तम तट पर सुभूमिक नाम वाले तीर्थ में पहुंचे। वहां उन्हें बहुत से गंधर्व और अप्सराएं दिखाई पड़ी। उस पवित्र तीर्थ में स्नान तथा दान करके गंधर्व तीर्थ में चले गए। वहां तपस्या में लगे हुए विश्वावसु आदि प्रधान प्रधान गंधर्व नाना प्रकार के बाजे बजा रहे थे, नृत्य कर रहे थे और गाना गा रहे थे। उस तीर्थ में स्नान करके बलदेव जी ने ब्राह्मणों को सोना चांदी आदि विविध वस्तुओं का दान किया और फिर भोजन कराकर बहुमूल्य वस्तुएं दी जो उनके काम में आने वाली थी। जो भी कामनाएं थी सब पूरी कर दी। तत्पश्चात वे गर्ग स्रोत नाम के तीर्थ में आए। वहां उन्होंने अपने अंतःकरण को पवित्र किया। नक्षत्रों और ग्रहों की गति का उलट फेर, भयंकर उत्पात, शुभ और अशुभ शकुन, जो ज्योतिष शास्त्र के नियम है, उन सब की उन्होंने शिक्षा ली। उन्हीं के नाम पर यह तीर्थ गर्ग स्रोत कहलाता है। यहां पर बलराम जी ने ब्राह्मणों को विधिपूर्वक धन दिया, नाना प्रकार के पदार्थ दिए, जहां हजारों की संख्या में यक्ष, विद्याधर, राक्षस, पिशाच सिद्ध रहते हैं। वे मेरुगिरी के समान ऊंचे स्थान के ऊपर रहने वाले ऋषियों से सुशोभित स्थान था। बलराम जी ने ब्राह्मणों की पूजा की और फिर उसके बाद वे द्वैत वन में आए। उस वन में ऋषि मुनियों के दर्शन किए, भोज्य पदार्थ प्राप्त किए। देवताओं ने वासुकी को सर्पों का राजा बनाकर अभिषेक किया था। वहां किसी भी सांपों के डसने का भय नहीं था। बलदेव जी ने वहां भी ब्राह्मणों को ढेर ढेर रत्न दिए। फिर वे पूर्व दिशा की ओर चले, जहां पग पग पर लाखों तीर्थ प्रकट हुए। उन सब तीर्थों में उन्होंने गोते लगाए और प्रजापति और ऋषियों के बताए अनुसार व्रत नियम का पालन किया। फिर सब प्रकार के दान करके अपने अभीष्ट वस्तु को देकर आगे चले और आगे सरस्वती नदी नैमिषारण्य वासी मुनियों के दर्शन की इच्छा से पुनः पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। जनमेजय ने कहा, सरस्वती नदी पूर्व की ओर क्यों लौटी? बलभद्र जी के आश्चर्य का भी कोई कम कारण नहीं होना चाहिए। उस नदी के इस प्रकार पीछे लौटने में क्या हेतु है? वैशंपायन जी ने कहा कि सतयुग की बात है, नैमिषारण्य तपस्वी ऋषियों ने मिलकर के 12 बरस तक होने वाला एक महान सत्र किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए बहुत से ऋषि मुनि आए थे। जब समाप्त हुआ तब उनके मन में तीर्थ के कारण वहां से ऋषि मुनियों का समागम हुआ था। उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि सरस्वती के दक्षिण किनारे के तीर्थ नगरों के समान मनुष्यों जैसे पट गए। वे वहां यज्ञ होमादि करने लगे। इन ऋषियों में सुप्रसिद्ध बालखिली, अश्मकुट, दंतोलूखली और प्रसंज्ञान थे। देखो पत्थर से फोड़कर जो खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो अश्मकुट कहलाते हैं। दांतों से जो खाते हैं वो दंतोलूखली कहलाते हैं, और प्रसंज्ञान वो कहलाते हैं जो पीस करके खाते हैं। कोई बहुतेरे तपस्वी पत्ते चबा कर रहते हैं, सब लोग मिट्टी की वेदी पर सोते हैं, नाना प्रकार के नियमों से लगे रहते हैं, ऐसी ऐसी तीर्थ में वहां पर स्थितियां होती हैं। वे सब ऋषि सरस्वती के नदी के किनारे आकर शोभा बढ़ाने लगे, परंतु वहां तीर्थ का कोई जगह नहीं दिखाई दिया। सब लोग निराश होकर के सरस्वती ने दयावश उन्हें दर्शन दिया और अनेकों कुंजों का निर्माण करती हुई पीछे लौट पड़ी और ऋषियों के लिए तीर्थ भूमि बनाकर पश्चिम की ओर मुड़ गई। उस महानदी ने ऋषियों के आगमन को सफल बनाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए वह अत्यंत अद्भुत कार्य किया। सरस्वती का बनाया हुआ निकुंजों का समुदाय ही नैमिषारण्य कहलाया। वहां के अनेकों कुंजों तथा पीछे लौटी हुई सरस्वती नदी को देखकर बलराम जी को बड़ा विस्मय हुआ। वहां भी उन्होंने विधिवत आत्मनियम स्नान किया, ब्राह्मणों को भांति भांति भोज्य पदार्थ दिए, वस्तु दी, और पत्ता खाकर के रहने वाले जो महात्मा थे उनको बड़े प्रेम से भोजन कराया। जन्मेजय ने पूछा कि सप्त सारस्वत तीर्थ कैसे प्रकट हुआ, मैं उसका वृत्तांत सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं सरस्वती नाम से प्रसिद्ध सात नदियां हैं। सरस्वती नाम से प्रसिद्ध सात नदियां हैं, ये सारे जगत में फैली हुई है। इनके अलग अलग नाम है, सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, अघोवती, सुरेणु, विमलोदका, सात हो गए। सात शक्तिशाली महात्माओं ने भिन्न भिन्न देशों में एक एक सरस्वती का आह्वान किया है। एक समय की बात है, पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का एक महान यज्ञ हो रहा था। यज्ञशाला में सिद्ध लोग ब्राह्मण विराजमान थे, पुण्याघोष हो रहा था, सब और वेद मंत्र की ध्वनि फैल रही थी, समस्त देवता यज्ञ कार्य में लगे हुए थे, स्वयं ब्रह्मा जी भी इस काम में लगे हुए थे। धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य मन में जिस वस्तु का चिंतन करते हैं वह उन्हें प्राप्त हो जाया करती थी। अधिक गुणों से संपन्न नहीं दिखता है, क्योंकि अभी तक वहां सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का ही प्रादुर्भाव नहीं हुआ, इसलिए उस स्थान के विषय में क्या कहा जाए। उस समय ऋषियों ने पितामह से कहा, यह यज्ञ अधिक गुणों से संपन्न नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक सरस्वती नदी का भी आह्वान नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया, उनके स्मरण करते ही सुषमा अर्थात शोभा सरस्वती पुष्कर तट में प्रकट हुई। पितामह के सम्मानार्थ वहां सरस्वती नदी को प्रकट देख ऋषि मुनियों ने बड़ी भारी प्रशंसा की। इसी तरह नैमिषारण्य में भी वेद के स्वाध्याय करने वाले मुनियों ने सरस्वती का आह्वान किया, उनके चिंतन करते ही वहां कांचनाक्षी नाम वाली सरस्वती नदी प्रकट हुई। ऐसे ही जब राजा गए यज्ञ कर रहे थे, उस समय उनके वैसे भयभीत लोग सरस्वती नदी के किनारे इकट्ठे होने लगे। और एक समय की बात है, उत्तर कोसल प्रांत में उद्दालक मुनि यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने सरस्वती का स्मरण किया। ऋषि के स्मरण करने से वह उस नदी में भी प्रकट हुई जिसका मुनियों ने पूजन किया था, वह मनोरमा नाम से विख्यात हुई, क्योंकि ऋषियों ने पहले उसका अपने मन में ही स्मरण किया था। ऐसी सुरेणु है जो गंगा द्वार पर प्रकट हुई है। राजन बलराम जी ने उस तीर्थ में रहने वाले लोगों को पूजन पद्धति बताई, फिर ऋषंगु नाम के आश्रम में गए। वहां ऋषंगु मुनि ने उनके देह का परित्याग कर वहां अपने देह का परित्याग कर दिया था। उनकी कथा ऐसा है कि ऋषंगु एक बड़े ब्राह्मण थे, सदा तपस्या में रहते थे। एक दिन बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपना देह त्याग करने का निश्चय किया। उस समय उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाकर कहा, मुझे पृथुदक तीर्थ में ले चलो। उनके पुत्र भी बड़े तेजस्वी थे। वे पिता को अत्यंत वृद्ध जान करके सरस्वती नदी के पृथुदक तीर्थ पर ले गए, वहां रहने लगे। वहां पहुंचकर ऋषंग ने तीर्थ के जल में विधिवत स्नान किया। अपने पुत्रों को बताया कि सरस्वती नदी के किनारे पर जो ये पृथुदक तीर्थ है, इसमें स्नान करके गायत्री आदि का जप करते हुए जो पुरुष प्राण त्याग करता है उसे पुनः जन्म मरण का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बलराम जी ने उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिया और लोक पितामह ब्रह्मा जी ने लोगों की सृष्टि प्रारंभ कर दी और रहने लगे। और वहां आरती सेन ने बड़ा तप किया। अब आरती सेन का तप बताते हैं। फिर सोम तीर्थ, अग्नि तीर्थ इत्यादि तीर्थों की महिमा करके और बलराम जी उस क्षेत्र में घूमने लगे। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप समन पंचक क्षेत्र सनातन है, ये प्रजापति की उत्तर बेदी कहलाती है। प्राचीन काल में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, महर्षि कुरु ने बहुत अनेक वर्षों तक वहां जमीन जोती थी, इसलिए उन्हीं के कारण से ये कुरुक्षेत्र कहलाता है। बलराम जी ने पूछा, अरे ऋषियों बताओ, कुरु ने इस क्षेत्र में हल क्यों चलाया, यही क्षेत्र में क्यों किया ऐसा काम? ऋषियों ने कहा, देखो बलराम जी, पूर्व काल में राजा कुरु जब यहां प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे, उन दिनों की बात है, इंद्र ने स्वर्ग से आकर कुरु से इसका कारण पूछा। जब वहां हल चला रहे थे तब इंद्र ने आकर के कुरु से पूछा, अरे भाई कुरु, आप इतना बड़ा प्रयास कर रहे हो, यहां की जमीन जोतने से आपको क्या मिलेगा, क्या अभिप्राय है, जमीन तो और भी बहुत पड़ी है, ऋषियों ने और जगह भी तो यज्ञ किया है। तब कुरु ने कहा कि देखो इंद्र, जो लोग इस क्षेत्र में मरेंगे वे पुण्यवानों के लोक में जाएंगे। सुनकर के इंद्र को हंसी आ गई, चुपचाप स्वर्ग में लौट गए। हंसी आने से कुरु का उत्साह कम होना चाहिए था, पर कम नहीं हुआ, वो जोत में लगे रहे। इंद्र ने कई बार उनके पास आकर प्रश्न किया, किंतु वही उत्तर पाकर हर बार लौट गया। कुरु ने भी कठोर तपस्या के साथ हल जोतना प्रारंभ किया। तब इंद्र ने उनका मनोभाव देवताओं से कह सुनाया। देवता बोले, अगर संभव हो तो राजर्षि को वरदान देकर राजी कीजिए, नहीं तो यदि वे अपने प्रयत्न में सफल हो गए और मनुष्य यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग में आने लगे तो हम लोगों का यज्ञ भाग नष्ट हो जाएगा। उन्होंने तो यही कहा कि जो यहां मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, तो देवता घबरा गए कि हमारे यहां तो रीति है यज्ञ करके आओ, और ये कहते हैं कि कुरु कहते हैं कि इस कुरुक्षेत्र में जो मरेगा मरते ही कल्याण हो जाएगा, नहीं स्वर्ग में चला जाएगा। और इधर वो तपस्या में भी बैठ गए कुरु। तब इंद्र ने कुरु के पास आकर कहा, राजन ज्यादा कष्ट मत उठाओ, मेरी बात मानो, मैं आपको वरदान देता हूं, जो मनुष्य यहां निराहार रहकर अथवा युद्ध में मरेगा, शरीर का त्याग करेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। बस इसके बाद आप अपना संकल्प हटा लो। राजा ने कहा, चलो अच्छा। इंद्र भी चला गया और राजा अपने काम में लग गया। तो हे बलराम जी, इस प्रकार शुभ उद्देश्य से राजर्षि कुरु ने ये क्षेत्र बनाया था, इसलिए कुरुक्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं है। जो मनुष्य यहाँ तप करेंगे वे देह त्याग के बाद ब्रह्मलोक में जाएंगे। जो यहाँ दान करेंगे उनका दिया हुआ दान हजार गुना बनेगा। जो यहाँ सदा निवास करेंगे उन्हें यमराज के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। जो राजा लोग यहाँ आकर बड़े बड़े यज्ञ करें तो जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक उन्हें स्वर्ग में रहने का सौभाग्य मिलेगा। साक्षात इंद्र ने भी कुरुक्षेत्र के विषय में उद्गार किया है कि कुरुक्षेत्र की धूलि भी यदि हवा से उड़कर किसी पापी के ऊपर पड़ जाए तो वे उससे उत्तम लोक में पहुंचाने वाली होती है। यहां बड़े बड़े देवता, उत्तम ब्राह्मण, नृग आदि नरेश भी यज्ञ करके उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। तरंतुक से लेकर आरंतुक तक तथा राम हृदय से आरंभ कर यमचक्र तक के बीच का जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र है और यही समंत पंचक है। इसे प्रजापति की उत्तर वेदी मानते हैं। बहुत ही पवित्र कल्याणकारी स्थान है। देवताओं ने इसका बड़ा सम्मान किया है। यहां मरे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार साक्षात इंद्र ने ये बात कही है और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं ने इसका समर्थन किया है। तदनंतर कुरुक्षेत्र का दर्शन और वहां बहुत सा दान देकर बलराम जी एक दिव्य आश्रम के निकट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुनियों से पूछा, ये सुंदर आश्रम किसका है? तब उन्होंने कहा, बलराम जी, पहले तो यहां भगवान विष्णु तपस्या कर चुके हैं, फिर अक्षय फल देने वाले कई यज्ञ भी इस आश्रम पर हो चुके हैं। बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली एक सिद्ध ब्राह्मणी भी यहां तपस्या कर चुकी है। ये शांडिल्य मुनि की पुत्री थी और उसका ये आश्रम। ऋषियों की बात सुनकर बलभद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और हिमालय के समीप उस आश्रम में गए। वहां के उत्तम तीर्थ का तथा सरस्वती के उद्गम का स्रोत देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद कारपवन तीर्थ में गए, स्वच्छ और शीतल जल में डुबकी लगाई, देवताओं का पितरण किया और उसी समय वहां पर सिद्धों के साथ बैठकर कथा सुनने लगे और वहां नारद जी वीणा बजाते बजाते आए। नारद जी को देखकर बलराम जी खड़े हुए, विधिवत पूजन किया और नारद जी से कौरवों का समाचार पूछने लगे। नारद जी ने जिस प्रकार कौरवों का महासंहार हुआ वो ज्यों का त्यों बलराम जी को सुना दिया। तब बलभद्र जी बड़े दुख प्रकट करते हुए कहा, हे नारद जी, उस क्षेत्र की क्या अवस्था है तथा वहां आए हुए राजाओं की क्या दशा हुई होगी, ये सब संक्षेप में मैं पहले तो सब सुन चुका हूं, अब मुझे विस्तार के साथ सुनने की इच्छा है। नारद जी बोले, हे बलराम जी, पहले तो भीष्म जी मरे, उसके बाद द्रोणाचार्य मरे, उसके बाद जयद्रथ मरा, उसके बाद कर्ण मरा। देखो, द्रोणाचार्य जी तो जयद्रथ से पहले नहीं मरे थे, जयद्रथ के बाद मरे थे। कर्ण और उसके पुत्र भी परलोक पहुंच गए। भूरिश्रवा, शल्य, दूसरे दूसरे महारथी भी मर गए। ये सब राजा और राजकुमार दुर्योधन के विजय के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके। जो मरने से बचे थे उनके नाम सुनो। दुर्योधन की सेना में एक कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तीन ही बचे हैं। किंतु जब शल्य मारे गए तो ये तीनों भी डर के मारे इधर उधर पलायन कर गए। उस समय दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ, भाग करके पास के द्वैपायन सरोवर में जाकर छिप गया। माया से सरोवर का पानी बांधकर वह उसके भीतर सो रहा था। इतने में पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पहुंचे और उसे बड़ी कड़वी कड़वी बातें सुनाई। उसको बड़ा कष्ट हुआ और वह भी बलवान था, वो ताने क्यों सहन करता। हाथ में गदा लेकर उठ पड़ा और भीमसेन से युद्ध करने के लिए उनके पास खड़ा हो गया। अब उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। यदि आपको देखने की इच्छा हो तो जल्दी जाइए और विलंब मत कीजिए, उन दोनों शिष्यों का युद्ध देखिए। बस फिर क्या था, नारद जी की बात सुनकर बलराम जी ने अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करके उनसे विदा ली और सेवकों के साथ द्वारिका चले जाने की आज्ञा मांगी। फिर वहां से सरस्वती का स्रोत निकला हुआ है उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर से नीचे उतरकर तीर्थ का महान फल सुनकर ब्राह्मणों के समीप उसके महिमा जान करके आए। सरस्वती के तट पर निवास करने में जो सुख और आनंद है वो कहां मिल सकता है, उसमें जो गुण है वो और कहां मिलेंगे। सरस्वती का सेवन करके स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए मनुष्य उसका सदाई स्मरण करते रहते हैं। तदनंतर बारंबार सरस्वती की ओर देखते हुए बलराम जी सुंदर रथ पर सवार हुए और शिष्यों का युद्ध देखने के लिए तेज चाल से चलकर द्वैपायन सरोवर के निकट पहुंच गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजा जन्मेजय इस प्रकार होने वाले उस तुमुल युद्ध की बात सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संजय से पूछ लिया, संजय सूत गदा युद्ध, हे सूत, गदा युद्ध के समय बलराम जी को उपस्थित देखकर मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, महाराज बलराम जी को वहां उपस्थित देखकर दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। राजा युधिष्ठिर तो बलराम जी को देखते ही खड़े हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनका पूजन किया, उनको आसन पर बैठाया, कुशल क्षेम पूछा। तब बलराम जी ने उनसे कहा, राजन मैंने ऋषियों के मुंह से सुना है ये कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र तीर्थ है, वह स्वर्ग प्रदान करने वाला है, देवता ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं, यहां युद्ध करके प्राण त्यागने वाला मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग में इंद्र के साथ निवास करता है, इसलिए हम लोग यहां से समंत पंचक क्षेत्र में चले, वह देवलोक में प्रजापति के उत्तर वेदी के नाम से विख्यात है, वह त्रिभुवन का अत्यंत पवित्र और सनातन तीर्थ है, वहां युद्ध करने से जिसकी मृत्यु होगी वो अवश्य स्वर्ग में जाएगा, वहां चले। युधिष्ठिर ने कहा, बहुत अच्छा, जो आपकी आज्ञा। बलराम जी की आज्ञा ली और समंत पंचक क्षेत्र की ओर चल दिए, जो कुरुक्षेत्र से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। राजा दुर्योधन भी हाथ में बड़ी गदा ले पांडवों के साथ पैदल पैदल चलने लगा। बड़ा शंखनाद हुआ, भेरिया बजी, शूरवीरों के सिंहनाद से संपूर्ण दिशाएं भर गईं। तत्पश्चात सब लोग कुरुक्षेत्र की सीमा में आए और पश्चिम की ओर आगे बढ़कर सरस्वती के दक्षिण किनारे पर स्थित एक उत्तम तीर्थ पर पहुंचे। वह स्थान सबको बड़ा पसंद आया। फिर तो भीमसेन कवच पहनकर हाथ में बड़ी नोक वाली गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन भी सिर पर टोप लगाए, सोने का कवच बांधे भीम के सामने डट गया। फिर दोनों भाई क्रोध में भरकर एक दूसरे को देखने लगे। दुर्योधन की आंखें लाल हो रही थी, उसने भीमसेन की ओर देखकर अपनी गदा संभाली और उसको ललकारा। भीमसेन ने भी गदा ऊंची करके दुर्योधन को ललकारा। दोनों ही क्रोध में भरे हुए थे, दोनों की गदाएं ऊपर उठी हुई थी, दोनों ही भयंकर पराक्रमी थे। उस समय ये दोनों राम रावण और बाली सुग्रीव के समान जान पड़ते थे। तदनंतर दुर्योधन ने केकय श्रृंजय और पांचालों तथा श्री कृष्ण बलराम और अपने भाइयों के साथ खड़े हुए युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर मेरा भीमसेन के साथ जो युद्ध ठहरा हुआ है उसको आप सब लोग पास में बैठकर देखिएगा, कोई हमारे पास नहीं खड़ा होगा, आप थोड़ा दूर बैठकर के देखिएगा। युद्ध के अंदर कितने पैंतरे होते हैं, कितनी उछल कूद होती है और कितने दूर दूर तक यहां गदाओं का टकराहट होने से टूटना भी होता है आप सब लोग एक तरफ दूर बैठ जाइए। चारों ओर राजाओं की मंडली बैठ गई, सबके बीच में बलराम जी विराजमान हुए क्योंकि सब लोग उनका सम्मान करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं ये प्रसंग सुनकर धृतराष्ट्र बहुत घबराया। उसने संजय से कहा, संजय जिसका परिणाम इतना दुखद होता है उस मानव जन्म को धिक्कार है, मेरा पुत्र 11 अक्षुणी सेना का मालिक था, उसने सब राजाओं पर हुक्म चलाया, सारी पृथ्वी का अकेले उपभोग किया, किंतु अंत में ये हालत हुई कि गदा हाथ में लेकर उसे पैदल ही युद्ध में आना पड़ा। इसे प्रारब्ध के सिवा और क्या कह सकता हूं संजय। संजय ने कहा, महाराज आपको इस समय होने वाले युद्ध को खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये सारा युद्ध आपके पुत्र प्रेम के कारण से, पुत्र मोह के कारण से हुआ है। जो मनुष्य समय पर सावधान नहीं होता है उसको आप ही की तरह से अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। संजय ने कहा, महाराज अब इनका बस युद्ध होने ही वाला है, इसको आप बड़े चाव से सुनिए। अब युद्ध होगा कल बताएंगे, कल तो नहीं परसों होगा, क्योंकि अब युद्ध बीच में तो छोड़ना नहीं है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।